أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر، اور خاص طور پہ مختلف جگہوں سے جو لوگ ہوتے ہیں، میں آج کل اسی مائنڈ سیٹ سے ڈیلی گزرتی ہوں کہ میں ایک دم کسی کو دیکھتی ہوں نا، تو وہ ظاہر ہے کہ مجھے تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے آیا، لیکن ایک دم یاد نہیں آتا کہاں سے آیا. اور چونکہ مختلف جگہوں کے لوگ مل رہے ہیں تو مجھے یاد نہیں رہتا میں کہاں ہوں. تو بہرحال آپ سب کو دیکھ کر یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں. باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن فذکر ان الذکرٰ تنفع المومنین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس وقت کا استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شیئرنگز وغیرہ کچھ ہیں، کچھ بعد میں بھی لیں گے. ابھی وہ کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ لوگوں کے لکھنے کے لیے نوٹس ہیں، پیپر کوئی پین ہے؟ آج کل کاپیاں نہیں ہوتی ہم لوگوں کے پاس، لیکن یہ ہے کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں وہ بہت کام آتی ہے. جیسے کل طواف کے دوران عائشہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی دعائیں جب مانگی تو پھر ان کو لگا کہ کام پورا ہوا ہے نا. واقعی سچ ہے یہ. میرے پاس بیسیوں تفسیریں، کلاسیں، ڈفرینٹ نوٹس ہوں گے، لیکن جب تک میں کچھ اس کا خاص طور پہ ایکسٹریکٹ اپنے ہاتھ سے لکھ کے نہ رکھوں، میرا دماغ نہیں کھلتا. اور میرا لیے یہ سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہمارے اپنے اسکل سیٹ میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس میں سے مکی دور، یہ ہے ہمارا آج کا ایک سیشن. اور اس سیشن میں ہم سیرت کا وہ جست لیں گے، وہ خلاصہ لیں گے کہ جس کو جاننے کے بعد واقعی ہمیں بھی یہ احساس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. سیرت وہ موضوع ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں. مسلمس تو مسلم، نان مسلم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں. آپ اگر اس وقت اپنے ذہن میں کوئی فگر سوچ لیجئے کہ بھلا کتنی لکھی گئی ہوں گی، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو وہ 10 ٹائم زیادہ کر لیں. 100 میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی بڑی اور ہر طرح کی کتابیں ہیں. پھر ان کے ٹرانسلیشنز بھی ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلمز کے ساتھ ساتھ نان مسلمز نے بھی کتابیں لکھی ہیں. ہسٹورینز کن کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نام نیا نہیں ہوگا. مستشرق. مستشرق وہ ہسٹورین ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلم ہسٹری پہ کتاب لکھے یا سیرت کی کوئی بات کرے لیکن وہ خود مسلم نہ ہو. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ عالم مان لیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہم جس آیت کے روشنی میں اس موضوع کو کریں گے وہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بے شمار نعمتیں دیں. سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کے دیا ہوا ہے. کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا سوائے اس ایک نعمت کے. اور وہ کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اس با صفیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں تھے. खुशी भी हो रही है इस आयत को पढ़कर और दुख भी हो रहा है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और आपकी जो नेमत है उसमें दुनिया को दी गई उसको यहाँ एक बहुत बड़ा एहसान तसव्वुर कराया गया। पहला सवाल तो मेरा खुद से होगा और आपका आपसे, क्या मुझे नबी सल्लम का वजूद एक नेमत लगता है? और अगर वो नेमत लगता है तो नेमत की कदरदानी करते हैं कि ना कदरी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लम से मोहब्बत एक मुसलमान के खून में बसी हुई है, इसमें देर इज़ नो डाउट। लेकिन क्या हम उनको नेमत समझते हैं? यस, हम भी समझते हैं। लेकिन अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वो क्या है, क्या फिर हम इस नेमत से फ़ायदा उठाते? आप किसी को कोई बहुत ही खूबसूरत अच्छी यूजफुल चीज़ दें और वो यूज़ ना करें, ज़ाया कर दे, बेकार इधर उधर डाल दे, और फिर आपको ये सब पता भी चल जाए तो आपको खुशी होगी कि गम होगा? गम होगा, दुख होगा, तकलीफ़ होगी कि ये क्या किया इन्होंने, मैंने तो इनको बड़े प्यार से ये चीज़ दी थी, और अगर किसी ने खुद मांगी भी हो या पूछ के आपसे बताकर फिर ये काम किया हो, तो सारी बात को समझ कर सोचिए। इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट, यू विल लूज़ इट। अगर तुम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम इस चीज़ को ज़ाया कर दोगे। और ये कोई मुश्किल असूल नहीं है, आपके किचन के काउंटर पे हमेशा वही मशीन, कोई टोस्टर है, कोई जूसर है, कोई भी हो सकता है, वही मौजूद रहता है जो काम करता है। रोज़ रखते हैं, रोज़ रखा होता है, रोज़ यूज़ होता है आपका टोस्टर, बिलफर्ज़ एक से दो बार वो आपकी ब्रेड जला दे, और एक दिन आप चलाएं और वो जले ही ना, तो आप कितने को दिन उसको रखेंगे? मेरे ख्याल सिर्फ उतने दिन रखेंगे जितने दिन नया टोस्टर नहीं आ जाता। तो अल्लाह की इस दुनिया में नफ़ामंदी बहुत बड़ी चीज़ है। वाम ममायन फ़ौद नासु फ़यमकुस, जो लोगों को नफ़ा देगा ना वो बचेगा, और नफ़ामंदी में सबसे ज़्यादा नफ़ा दुनिया में अगर कोई किसी को दे सकता है तो वह अम्बिया कराम है, रसूल, चुने हुए लोग, और उनमें से भी फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रोज़ एक दुआ करते हैं एटलीस्ट 17 टाइम। अगर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं आप, कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ी किसी की, कोई सुन्नत नहीं पढ़ी, कोई नफिल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ जो कि फ़र्ज़ों की सूरत में, तो आप एक दुआ करते हैं, और वो क्या है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किए। अब सवाल ये है कि इनाम वाले लोग कौन होते हैं? तो इसका जवाब सूरत निसा में आता है, वमन युति अल्लाह व रसूल फौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबीय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। ये एक पूरा लेक्चर, क्या पूरा एक कोर्स किया हमने इस पे, अनअम अलैहिम ही के नाम पे था। तो बात क्या हुई कि अल्लाह सुबहान तआला ने इस दुनिया में जो नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दी वो इस्लाम की थी। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए अपने इस्लाम की नेमत को पूरा कर दिया। और इस नेमत को देने के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने जिन इंसानों को चुना उनको अम्बिया कराम कहते हैं। इस्लाम की नेमत हर ज़माने में इंसान को दो ही ज़राए से मिली है, एक अल्लाह का कलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम। जिनको अल्लाह ताला ने चुना उनका खुद तज़किया किया, उनको मासूम अनिल ख़ता किया, गुनाहों से पाक किया, और फिर उनको एक ज़रिया बनाकर इंसानों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला का एक वादा था उनसे, और वो क्या? कुल नहबितु मिन्हा जमीया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिय खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरी तरफ़ से तुम्हारे पास हिदायत नामे आएंगे, किताबें आएंगी, रसूल आएंगे, फिर जो कोई इनको मानेंगे वो क्या होंगे? कामयाब होंगे। तो नबियों को अल्लाह ने कामयाबी की दलील बनाकर भेजा, और हम आज उसी प्यारे नबी जिसका तज़किरा इस एक आयत में है कि जिनको अल्लाह ने भेजा, कोई आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेथडोलॉजी क्या थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी क्या थी? अगर मैं सिर्फ़ अपनी आदत के मुताबिक कुरान की तफसीर ही को साथ लेकर चलूं, तो आप देखिए कौन सा रसूल भेजा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस वासफ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिम। ये दो बातें हो गई। पहली बात क्या है? अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पे। क्या किया? जब मबूस किया उनमें रसूल उन्हीं में से। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लम इंसान थे, बशर थे और कुरैशी थे। जिस कौम जिस बस्ती में भेजे गए उन्हीं की जुबान बोलते थे। ये किस बात की दलील है? कि कुरान को अपनी जुबान में समझना चाहिए। अगर हमें अरबी नहीं आती तो फिर हमें अपनी ही जुबान के किसी इंसान को उस्ताद बनाकर उससे उसको सीखना चाहिए। अब नबी ने किया क्या, ये है इस वक्त का। मैं सीरत में से एंड पे आपको जो रिजल्ट देना चाहूंगी ना, वो ये दूंगी। नंबर एक, यतलू अलैहि आयाती ही, वो उन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है। तला यतलू तिलवन तिलावतन, पीछे लगना। हमारे यहाँ तो तिलावत गले के अंदर से चंद आवाज़ों के निकालने का नाम है ना, डिक्शनरी में भी और सहाबा के अमल से भी। देखिए तिलावत क्या होती है? जिसमें अल्फाज की पैरवी अमल करें। लफ्ज़ जो आप बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्या कुरान कहता है, आपको कोई मिसाल ले लीजिए आप कुरान की, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून। अब मैंने इसकी तिलावत की तो मेरा अमल इस बात का तकाजा करता है कि मैं ईमान को बढ़ाऊं और अपनी नमाज में खुशू लाऊं। हमारे अमल के बगैर सिर्फ वो मखारिज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक कुरान यहाँ रह जाएगा, खलक आखिरी मखरज यहाँ का होता है, आप सब जानते हैं एग्जिट, जहाँ से अल्फाज निकलते हैं। कुरान पढ़ा जाएगा लेकिन उसका सिर्फ एक नाम होगा, रस्मन नाम होगा, इस्लाम का नाम रह जाएगा। और आज बहुत सारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अम्बिया कराम का काम क्या होता है? कि कुरान पढ़ना सिखाए। आप और मैं यहाँ बैठे, और माशाल्लाह जो सऊदीया में रहते हैं वो इस लिहाज से खुद भी खुशकिस्मत है और उनके बच्चे भी। तजवीद अच्छी हो जाती, तहफीज पे बहुत जोर है, तहफीज पे जोर दीजिए। आपको यहाँ रहने का एक बेनिफिट मिल रहा है ना, अपनी भी तजवीद अच्छी कीजिए, बच्चों की भी करें। और माशाल्लाह मैंने देखा कि मस्जिद नबी में इतने हलके हैं कि दिन रात में मुख्तलिफ औकात में जाकर सीख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों की इतनी प्यारी तजवीद है, बहुत प्यारी बात है, सीखिए। दूसरा काम आप लोग भी क्या करें, ग्रामर सीखिए, अरबिक लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। हम उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और जहाँ भी हम रहते हैं, हम इसका अल्टरनेट क्या कहते हैं कि लफ्जी तर्जुमा सीखें। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आ जाता है तो नमाजें जिंदा हो जाती हैं। इमाम साहब कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, कौन सी आयतें, और इनमें मेरे लिए मैसेज क्या है, ये आप मगरिब ईशा और फजर की नमाज में इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यतलु अलैहि मायाती ही का पहला अमल क्या होता है कि आपको कुरान ठीक पढ़ना आ जाए। फिर वयुज़क्कीहिम, यहाँ देखिए आखिरी चीज़ पहले है, तज़किया, क्लीनलीनेस ऑफ सोल, सफाई करता है रसूल, दिलों की सफाई, जुबान की सफाई, आंख की खयानतों से बचाता है। यानी रसूलों का काम इंसान की प्यूरिफिकेशन है, और तज़किया ड्यूल एक्शन है, डबल, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना और बुरी चीज़ों को निकालना। अब सवाल ये है कि आपने इतनी मेहनत से उम्रा किया, स्टेप्स कितने गिने? कल आपके स्टेप्स गिने थे किसी ने? 24,000 स्टेप्स कल के दिन के, डेट चेंज हो गई फर्स्ट की और उसके बाद, यानी सिर्फ सही करें आप तो आपके 10,000 स्टेप्स बनते हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर के भी चक्कर हो जाते हैं ना, इधर से जाना उधर जाना, मेहनत, आने की मेहनत, एक ह्यूज अमाउंट पे की, सफ़र किया, 10-10-15 घंटे की फ़्लाइट्स ली अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब क्या हुआ, उम्रा हो गया, उम्रा हो गया, उम्रा मुबारक, उम्रा अभी तो जो मुबारकें आपको जाके मिलनी है, फूलों के हार आएंगे देखिएगा आपके लिए, किसी ने बैलून्स लगाए होंगे, किसी ने फूल रखे होंगे, उम्रा मुबारक। कोई नमाज मुबारक नहीं कहता, रोज़ा रखा किसी ने नहीं कहा रोज़ा मुबारक, या हज मुबारक, या उम्रा मुबारक। ये वो नेकियां जो दूसरों को हमारी दिखती है ना। अब जब आपको ये नेकियां करके इतनी मुबारकें मिलती हैं तो आप कहते हैं चलो शुक्र है उम्रा हो गया। नहीं, उम्रा भी शुरू हुआ है आपका, तज़किया। क्यों फेरे लगाए, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, क्या सिखाया इसने? मैं हाजिर हूँ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। हम उम्रे के दौरान या हज के या तवाफ के भी दौरान जो चक्कर लगाते हैं ना, ये हमें क्या सिखाता है? फोकस पॉइंट सही करो। वलिकुल्लिन विच्छुन हुआ मुवल्लीहा, दूसरे पारे के बिल्कुल शुरू में किबले की तब्दीली की आयतों के साथ जो आयत है कि तुम में से हर एक का एक फोकल पॉइंट है। फोकल मीन जिसके इर्द गिर्द आप घूमते हैं। और कार या कंपस याद करें, बचपन में आप भी गोल दायरे बनाते थे ना, एक दायरा अंदर नोक और दूसरा उसके बाहर। अंदर वाला नहीं हिलने देना, बाहर छोटे बड़े जितने मर्जी खींच ले। बंदे मोमिन का दिल अल्लाह सुबहाना तला के गिर्द घूमता है। कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी नमाज सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये जो रात को अपने फेरे लगाए हैं ना, 7 चक्कर, और ये 7 चक्करों की भी हकीकत है। ये हमारे सेशंस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अलग भी होंगे होटल में, तो वहाँ भी देखेंगे। ये कोई दौड़, ये कोई मैराथन है, ये कोई उम्रे पे उम्रा? अच्छा मैं मस्जिद आयशा जाके एक उम्रा कर लूँ, मैं वहाँ से जाकर ये तरह गिनने हैं? किसको बताना है आपने? जाके शो मारनी है, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने 10 उम्रे किए, मैंने खतीब में नफिल पढ़े, मैंने हजरे अस्वद पढ़े। क्यों, ये कोई किस्सा दास्तान नहीं है? ये तज़किया है। पसीना बहा, बिल्कुल बहा। इतनी अच्छी जगह, इतना इंतज़ाम, इतनी एसी, और क्या अल्लाह करे और सऊदी हुकूमत करे, इससे ज़्यादा कोई किसी मेहमान की इज्जत कर सकता है? फिर भी गर्मी भी लगती है, पसीना भी आता है, पाँव भी थकते हैं। क्यों? अल्लाह आपको मुझे पाक करता है। यहाँ से जाना नहीं है जब तक साफ सुथरे ना हो जाए अंदर बाहर से। अंबिया कराम का असल काम तज़किया था। और आज जो मक्की दौर की झलकियाँ भी थोड़ी सी देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल की मशक्क़तों, आजमाइशों और मसाइल के ज़रिए सहाबा कराम का तज़किया किया। अल्लाह यही कह रहे हैं, कोई एक जंग नहीं हुई मक्की दौर में, नमाजें नहीं है। आप कहते हाय कितना मज़ा आता होगा, नो नमाज। देखिए कुछ लोग फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते और कुछ अपने ऊपर खुद ही फ़र्ज़ कर लेते हैं। भूख लगती है ना, तो आप खुद ही इधर उधर खाना ढूंढते हैं, स्नैकिंग करेंगे, निमको खाएंगे, चिप्स का पैकेट खोलकर बैठ जाएंगे। क्योंकि बंदे मोमिन की अर्ज, उसको अर्ज है कि मैं थोड़ी देर बाद जाकर अपने रब को कुछ सुनाऊँ, कोई बात करूँ। मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरा रब किस बात से खुश होगा? अल्लाह के नबी ग़ारे हिरा में जाकर क्या करते थे? नमाजें तो फ़र्ज़ हुई जाकर कहीं मक्की दौर के बिल्कुल एंड पे, इसरा मेराज के मौके पे। वो फितरत की पुकार थी कि मुझे करना है। सूरत आहा में अल्लाह ताला कहते हैं नमाज पढ़िए ताकि ला अल्लाह के तौर दो, ताकि आप राज़ी हो जाएं। हम क्या कहते हैं, नमाज पढ़ लो ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह बात में राज़ी होता है, पहले आप राज़ी होते हैं। फैज़ा फ़रख्ता फ़न सब, जब तू फारिग हो जाए ना तो फिर मेहनत कर। ये जो सारे हिंट्स हैं ना, ये क्या बताते हैं कि इंसान के अपने दिल में इस चीज़ की तड़प पैदा हो जाए कि मैंने गंदे मंदे नहीं रहना। जब पसीना आता है उसके बाद क्या दिल करता है? शावर ले, साफ सुथरे कपड़े पहने। तौबा शावर है, तौबा का गुसल फरमा के जाइए। और फिर वो जो इत्र लगाना, खुशबू लगाना, ये नेकियों के जज्बे हैं। और सहाबे कराम को देखकर इस बात का यकीन आता है कि जैसा उस्ताद होता है वैसे शागिर्द होते हैं। इतना गम लग गया था सहाबा को अपना कि छोटी छोटी बातों पे आगे रोते थे। अल्लाह के नबी ये हो गया अब हमारा क्या बनेगा? जैसे हम ये हज उमरे के जो रिचुअल्स पे घबराते हैं ना, हाय हाय ये होगा, आईना देख सकती हूँ मैं एहराम की हालत में, दम तो नहीं देना पड़ेगा, वो मैं हंस सकती हूँ, स्माइल देने से मेरा एहराम टूट तो नहीं जाएगा, अच्छा मैं वो जूता सही पहन सकती हूँ। यानी हमारे देसी कल्चर में उम्रे के दौरान एक गिल्ट हमेशा ही रहता है कि तवाफ गया, हाय ये गया, वो गया, किबले को नहीं देखना। किसी ने कहा, ये पिछले हफ्तों में ही किसी दिन सवाल आया था, किसी ने उनको बताया, अल्लाह जाने कौन है वो बताने वाली, कि उम्रे के तवाफ के दौरान काबा को नहीं देखना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप कहाँ से इतने बड़े मुफ्ती बन गए? और ये मुमकिन है? और इसकी लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। तज़किया, तज़किया और तरबियत। और साथ ही आगे देखिए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको तालीम दे किताब और हिकमत की। किताब से तो यहाँ बड़ी साफ बात मालूम होती है, कुरान। और हिकमत के बारे में मुख्तलिफ अकवाल है, उसमें एक ही कौल इमाम शाफी रहमुल्ला का है कि हिकमत जहाँ भी किताब के साथ आता लफ्ज़ तो उससे मुराद हदीस होती है। तो ये नसाब है, दिस इज सिलेबस, क्यूरिकुलम, पेंसिलम, नॉर्वेजियन में क्या कहते हैं, पेंसियम, पेंसियम है ये आपका क्यूरिकुलम है। क्यों? नंबर एक, आपको मुझे कुरान पढ़ना आता हो, एटलीस्ट हराम गलतियां तो ना हो, खौफ और काफ का फ़र्क पता हो, हा और हा का फ़र्क पता हो। दूसरी बात जो आखिरी, इधर युज़कीम शुरू में इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी ना उसमें युज़कीम एंड पे, ये भी बड़ा किसी मौके पे मैंने ये तीनों आयतों को इकट्ठा रख के इंडेप्थ स्टडी करानी है इंशाल्लाह। इब्राहिम ने दुआ मांगी थी रब्बना बबिस फीहिम रसूलम मिनहुम, उसमें भी यही चार चीज़ें। फिर यहाँ ये जो हम पढ़े आल इमरान 164 में भी यही है, और आगे जाकर आप पढ़ते हैं तो सूरह जुम्मा में भी है। तरतीब फ़र्क है, और वो क्यों फ़र्क है, इसमें भी हिकमत है। एक करना ये है तज़किया, फ़िक्र लग जाए अल्लाह के नबी हमारी बीवी काम पे क्या हक है, कल क़यामत के दिन ये हमें पकड़ ना ले। आज हम कहते हैं ये ज़रा इन बीवियों को बताना शौहर के क्या हकूक होते हैं, आज हमने औरतों को भी कॉन्शियस कर दिया हकूक जी, औरतों के हकूक, निस्वा हकूक, फलां हकूक, और जिन्होंने देने हैं वो देखो ही नहीं रहे, तो निरे झगड़े। ये फिक्र पड़ जाए कि मैं तो अपना हक दे रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छी बीवी हूँ कि नहीं, मैं अच्छी बहू हूँ कि नहीं, मैं अच्छी सास हूँ कि नहीं, इतना गम लग जाए। ये तज़किया होता है, कोई मेरा हक मार दे इट्स फाइन, मैं ना मारूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक कॉल बड़ा प्यारा सा मंसूब है, वो कहा करते थे क़्यामत के दिन मैं मज़लूम होकर आऊँ, यानी किसी ने मेरे ऊपर जुल्म किया और मैं मज़लूम बन के आया, इट्स ओके okay, मैं गवारा कर लूँगा, बट मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं क़्यामत के दिन जालिम बन के आऊँ। क्या आज उम्मत मुस्लिमा ये काम करती? रास्ते में आप में से कुछ सुना रहा था कि टैक्सी ऑर्डर कोई और की, पैसे किसी और चीज़ के दिए, बड़ी या वो भी जो भी कोई अच्छी की होगी, और जब आई तो वो चीज़ नहीं थी, तो पूछने पे उन्होंने कहा तुम उम्रे पे आए हो तो तुम्हें टैक्सी की फिक्र है कि कौन सी गाड़ी आई कौन सी नहीं। नहीं, टैक्सी की फिक्र नहीं है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया है ना, आपको प्रॉमिस था ना कि आप इस होटल में आएंगे, तो किसी और में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये है मैन ऑफ द वर्ड। तो लिखिए, आज सीरत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं ना, मक्की दौर है, और ये खूबसूरत नबी आपका मेरा प्यारा रसूल, जिसको अल्लाह ने ये हिकमतें दी, वो हम पर ये एहसान करके गए। मुअल्लिम आज़िम थे वो, मुअल्लिम आज़म सबसे बड़े टीचर नबी सल्लम थे, उस्तादों के उस्ताद नबी सल्लम थे। अल्लाह ने फरमाया व इन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी दलाल मुबीन, हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराही में पड़े हुए थे। कितना बड़ा एहसान है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह के नबी ने हमें इंसान बनाया। हम 4 दिन मदीना में रहकर आए हैं, और बिल्कुल आप कह लें कि मस्जिद के कोने पे कमरे के अंदर से विंडो से पूरा वक्त विंडो दिखती थी, जो मैंने इस दफ़ा फील किया अल्लाह के नबी की कुर्बत को, वो बात पहले नहीं किया। फिर फ़र्क पड़ता है क्लोजनेस से, खाना काबा के बिल्कुल करीब अब तो आप करें वो और होता है, और दूर जाके करें तो सोच ही भटक जाती है। तो मैं कहती थी कि अल्लाह के नबी आपने तो खून भी जलाया, आपने तो पाँव के अंदर खून से जूते भी चिपकवा ले, छाले भी पड़ गए बोल बोल के इन्नी दाऊ तो कौमी लई लम्बा नहारा, जैसे सूरह नूह में हजरत नूह की बात है, आपने भी कमी नहीं की, लेकिन हम उम्मत ने आपका हक नहीं दिया। वो किसी ने कहा ना कि किसी गम गुसार की मेहनतों का क्या सिला हमने दिया, बुला दिया रबी लवल आता है तो हमें याद आ जाता है एक मिलाद कराना, कुछ फूल बूटे लगा के झंडियाँ लगा के मोहब्बत का इजहार करते, नहीं उस नबी का एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, क्या आपकी ज़िंदगी थी, आपको अल्लाह ने क्यों चुना? तो ज़रा सा आज से हम एक बड़ा, यानी ये भी तस्कीरी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको भी कहूँगी जो यहाँ बैठे हैं, हमारे पास सीरत के जो मुझे उंगलियों पर याद हैं वो रही को मख्तूम का सेट है, हमारे यूट्यूब चैनल नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN, यानी डबल ओ नहीं आता लफ्ज़, नूर में यू आता है, इस पर पूरी रही को मख्तूम है, और ऑफ कोर्स जो इस पे है ना वो हर चीज़ nurulquran.com में ऑडियो शक्ल में भी है, ऐप स्टोर है हमारे पास इसी नाम से नूरुल कुरान ऐप्स में, उस पे भी मौजूद हैं चीज़ें, लेकिन जो हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग में रही को मख्तूम है, तजलियात नबूवत है, मोहसिन इंसानियत है, डेजर्ट रोज़ मक्की दौर है, वो भी खुलासा है, वो हमारे ऐप पे से आप लोग सुन सकते हैं, सहरा का फूल, 2 छोटे सेशंस 1 साल में, 2 दिन में वो और 2 दिन में वो, जैसे ये हो रहे हैं ना सेशन, इसी तरह वो भी था, और मक्की दौर था दुर्रे यतीम और मदनी दौर था डेजर्ट रोज, सहरा का फूल। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है। फिर इसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी उंगलियों पर 1, 2, 3 बुलेट पॉइंट्स की सूरत में, ये भी 2-2.5 माह पहले हमने किया ये सेशन, और एटलीस्ट 10 के करीब हमारे पास सीरीज है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें तो है। तो ये जो आज का हमारा ये जो सेशन है ये उसमें एक इजाफा है, लेकिन मैं आपको दावत दूंगी कि डिटेल से सुनिए। अगर हम मक्की दौर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझना चाहें तो मक्की दौर क्या है, यानी हाउ कैन वी डिफाइन द मक्कन पीरियड, मक्की दौर क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले के 40 साल और नबूवत के बाद के 13 साल। अब जब नबूवत के पहले 40 साल आप कहते हैं तो फिर हमें देखना होगा कि नबी सल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी क्या थी। मैं नबूवत से पहले की ज़िंदगी नहीं, अरब के हालात अगर आपके सामने रख दूँ, बिलीव मी, आज के दौर को लोग कहते हैं फितनों का दौर, परेशानियां हैं, फितने हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम है, और जी न्यूडिटी है और LGBT शीटी क्या कुछ है, इससे भी वर्स्ट हालात है। और ये याद रखिए कि नबियों को अल्लाह दुनिया में किसी भी नबी और रसूल को उस वक़्त भेजता है जब पूरे अंधेरे छा जाते हैं, इंसान जानवर बन जाता है, यानी बिलफर्ज़ से अगर नबूवत का तार टूटा ना होता, अल्लाह के नबी खातम नबी ना होते, तो इस वक्त बिलक बिलक के तड़प तड़प के इंसानियत किसी नबी को मांग रही है। कितने नबी आ चुके होते इस दौर में कि अल्लाह के बंदो कर क्या रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सही बनो। नबियों का काम भी नज़ीर था, नज़ीरा व बशीरा। तो अरब की ज़िंदगी क्लैश, मैं 2-4 लफ्ज़ बोलूं क्योंकि यहाँ तो हम कर ही नहीं सकते और ज़रूरत भी नहीं करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा किए गए थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट जनरेशन में से थे उस वक़्त, और जो लोग थे वहाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है आपके मेरे लिए, अगर आपने कभी सीरीज नहीं कोई सुनी, हम बड़ी रौनक से कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का के दौर में कौन थे, मुशरिकी ने मक्का, यही कहते हैं ना, काफिर थे जी, मुशरिक थे, यही कहते हैं ना कि नहीं कहते, मदीना के यहूद, यहूद मदीना और मुशरिकी ने मक्का। बिलफर्ज़ अगर ये जुमला हम में से कोई उनके मुंह पे जाके कह देता, अबू जहल और इसी तरह से अबू तालेब, अबू लहब, सिंबल्स है ना, इनके तो नाम ले सकते हैं हम क्योंकि कुरान ने लिए हैं और नबी ने लिए हैं, अगर इनके मुंह पे जाके कोई कह देता अबू जहल तो मुशरिक हो ना और अबू लहब आप तो काफिर हैं, तो उसे आपकी यहाँ से गर्दन पकड़नी थी। जितना आज किसी मुसलमान को आप मुशरिक कह दें, मुनाफिक कह दें या काफिर कह दें तो उसको गुस्सा आएगा, इससे ज्यादा गुस्सा उनको आता। क्यों, बात समझिएगा, क्योंकि मैंने तो हमेशा एक ही बात सीखी है कि आप बात वो करो जिससे अमल का फर्क हो। वो सब खुद को मुसलमान कहते थे। नबी सल्लम के बाप का नाम देखिए अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, माँ का नाम देखिए आमिना, मुसलमान नाम नहीं है, समझ रहे, अब्दुल मुतलिब, अबू तालिब, ये नबी सल्लम के इंसेस्टर्स जो थे हज़रत इस्माइल की डायरेक्ट जनरेशन से थे और वो नबी थे। इस्माइल का ताल्लुक ऊपर से इब्राहिम के साथ था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये कहते थे वो हमारे, अल्लाह ने कुरान में पेश कर दिया कि माँ का ना इब्राहिम यहूदी मला नसारा, और ना वो मुशरिक थे, कौन थे वो, काना हनीफन, वो फोकस, ये नहीं कहा काना मुस्लिमन, मुस्लिम होना और बात है, हनीफ नहीं, हम वी आर नॉट फोकस्ड पर्सन, हम तवाफ पे तवाफ करते, चक्कर चढ़ जाते, हम साल घूमने लगता है, लेकिन हमारा फोकस नहीं ठीक होता। यहाँ से फोकस लेके जाइए, आपकी पूरी ज़िंदगी जिस पॉइंट पे गुजरे वो क्या है कि जो मेरे रब ने कह दिया मैंने वो मानना है, अक्ल में बात आए या ना आए माननी है, इफ्स एंड बट्स नहीं तोलने। हम अपनी अक्ल का चौकीदार हमेशा अपने साथ रखते हैं, अल्लाह का कोई हुक्म सुना कहते अच्छा लो मैं अपनी ज़रा अक्ल के वकील से पूछ लूँ, क्या ख्याल है ये हुक्म ठीक है, मानना चाहिए, नुकसान तो नहीं होगा, मेरे साथ कुछ मामला तो नहीं बिगड़ेगा, वो ये करके फिर वो अगर आगे से आपको कहते ओके गुशन कर दो, सर्टिफाइड कर दो, स्टैंप लगा दो कि ठीक है कर लो, तो हम कर लेंगे। और ज़रा अगर थोड़ा सा हमें शक बढ़ जाए कि ये हुक्म मानने से हमारी दुनिया जाती, दुनिया नहीं जाती, थोड़ी हो जाती। सूद की मिसाल ले लें, सूद पे काम करेंगे ना करें, आज के दौर में सूद पे घर लें कि ना लें, सूद सूद मिसाल है। अब ये हुक्म आ गया, कुरान की आयतें आपके सामने खुलती हैं कि उलमा का इस पे इजमा है कि अल्लाह के हकूक में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। हकूकुल्लाह में कमी में शर्क शिर्क इन्ना शिर्क अला जुल्म नजीम, और इंसानी मामलात में सबसे बड़ी हक तलफी सूद है। इतनी सजाएं इकट्ठी किसी और जुर्म पे नहीं जितनी अल्लाह ने कुरान में क्या कह दी, फाजनु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलि अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतहब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कहीं नहीं आया। शराब पे भी ये बात नहीं आई, जिना पे भी ये बात नहीं आई। इसका ये नहीं था कि वो छोटे अमल है, लेकिन समझाने की बातें कर रही हूँ। लफ्ज़ हराम आ गया, कद अहल्लल्लाहुल बै वहर्रम अर्रिबा, 40 से ज्यादा स्ट्रेट हदीसें इसके बारे में कुरान में, एटलीस्ट 6 आयतें सूरत की, 6 डिफरेंट टॉपिक्स पे मौके पे, उससे भी ज्यादा इशारे, फिर भी कहते हैं नहीं ना, वो मैंने पूछ लिया है ना। आज के दौर में कर सकते कुछ कहते, दूसरे कहते गैर मुस्लिम मुल्क में रह के कर सकते, तीसरे कहते वो जो स्टेट का लॉ होता है वो फॉलो करना होता है, तो हमारे मुल्क में तो ये मस्ट है जी। पांचवे कहते नहीं, मैंने सुना है एक घर ले लेते हैं, ये हमारी अक्ल की होशियारी है, चौकीदारा करती है हमारी अकल। अल्लाह क्या कहता है, तुम्हें समझ आ रही है कि ये तुम चक्कर क्या लगा रहे हो? सिर्फ एक दफा शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर, एक दफा कह लो, दो बार कह लो, ये सारा वक्त कहते रहो। और जब रुकने यमानी से आओ तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरह, इसके बाद एक लफ्ज ना बोले, आपका तवाफ हो गया। कोई दुआ ना मांगे, कुरान की तिलावत ना करे, नबी पे दुरूद ना करे, तवाफ हो गए, कोई फर्ज चीज नहीं है। क्यों? अल्लाह कहते सोचो, अक्ल इस्तेमाल करो इस वक्त। अल्लाह सुब्हान तआला आपको मुझे जब वहां से गुजारता है, पहले तो बाबे काबा हजरे अस्वद, और चंद कदम चले तो आपके सामने मुकाम इब्राहिम है, वहां खड़े होकर रो लो, लोग चूम रहे, मुंह को लगा रहे, वो शीशा पता नहीं कब बाद में बना। लेकिन जो मुझे समझ आती है, तवाफ के अंदर की जो इबादत है ना, वो गौर व फिक्र है, कमिटमेंट्स, कुछ वादे करो, कुछ वे अल्लाह से बातें करो, कुछ सुखो, पंजाबी में कहते हैं सुखना, नजर मानना, कुछ कमिट करो, आई विल डू मेरे अल्लाह, अल्लाह जी अब मेरी मदद करना। और एक मुकाम इब्राहिम के पास खड़े होके दुआएं कर लो कि अल्लाह हमारे कदमों को भी जमा दे, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रं व सब्बित अक़दामना। अब इसको अल्लाह के बंदो दुआ ना बना देना, नूरुल कुरान वालों ने बोला है कि जी हिजरे अस्वद के पास खड़े होके वह सब भी तकदाम, क्योंकि वो टोटा मिल गया ना कदमों का। ये जितने वजीफे पाकिस्तानी देसी किताबों में लिखे वो ऐसे ही लिखे, बिलीव नहीं। एक दफ़ा एक सिस्टर मेरे पास आई, कहने लगी मुझे किसी ने एक दुआ बताई है तो मैं ज़रा देखे मैं पढ़ूँ। मैंने कहा कौन सी दुआ आयत की? क्या अल्लाह की बंदी, कुरान की आयत है कि क़यामत के दिन लोगों की नज़र तेज़ हो जाएगी, यानी जिस दिन ये पर्दे जो गैब के खुल जाने हैं तो उनको वो हकीकतें दिखेंगी जो नहीं है। वो आयत मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप ना शुरू कर दें कि शायद हो ही जाए। तो कहती है कि ये आयत मुझे किसी ने दी है कि इसको इतनी दफ़ा पढ़ो शुरू आहर भी कुछ लगा के तो नज़र तेज़ हो जाएगी। कुरान बता रहा है ये आखरत की आंखें खुलेंगी तुम्हारी, ये इसकी हालत है। इसी तरह एक दफ़ा एक सिस्टर थी, यंग बच्ची थी, वो जी किसी से शादी का इरादा है, दिल है बड़ा, हो नहीं रही, तो मुझे वो फलाने एक बड़ा सीक्रेट सा तोहफा दिया है, तो मैं पढ़ने, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ, मैंने कहा बताइए, और वो क्या है, हैरान होंगे आप। अब उसमें लफ्ज़ आता है कब्ज़ा, कब्ज़ना हो कब्ज़ा यसीरा, इतना ही टोटा बताऊंगी। ये सूरज जो इतना बड़ा घूमता है ना, अल्लाह कहते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहते हैं इसको खींच लेते हैं, जब अल्लाह चाहेगा ये नहीं निकलेगा। तो कह रही कि मुझे किसी ने कहा कि इस आयत को आप उस लड़के के तसव्वुर को सामने रख के, उस रिश्ते को, तो इसको पढ़ो, वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ये लिया हम देसियों ने, पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों ने, जो उर्दू वाले हैं प्यार से तीन ही मुल्क ले दिए ताकि गुस्सा ना करे कोई, हम वजीफे लेते हैं। मैं अकेली उम्रे पे हूँ तो मैं तो एक लफ्ज़ नहीं बोलती, मेरा दिल मेरा दिमाग कहीं और, तब की जो सही होती है ना उसमें तो मैं कहीं और होती हूँ, बीबी हाजरा और मैं। एक औरत के कदमों पे अल्लाह बंदे को चला दे, सारे मर्दों को चला दिया, वो भागी मर्दों तुम भी भागो, और तभी भग गई। आप देखिए, कल मुझे किसी ने सवाल किया कि सच्ची में पूछूं बुरी बात तो नहीं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा, ये मर्दों के कपड़े क्यों उतरवाए हुए अल्लाह ने? कितना हार्ड है कि कितनी बड़ी गैदरिंग में इतने क्लोजली मर्दों का ऑलमोस्ट बेलिबास देखना। तो मैंने कहा यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, ये कियामत के मैदान की अल्लाह ने आपको तैयारी कराई है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अल्लाह के नबी से जब ये सुना कि कियामत के दिन लोग नेकेड उठाए जाएंगे, लोगों के जिस्मों पे कपड़े नहीं होंगे, तो कहा अल्लाह के नबी औरतें और मर्द देखेंगे नहीं एक दूसरे को? तो आपने कहा सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मामला उससे ज्यादा सख्त है जो तुम सोच रहे हो। अब एक माँ का बच्चा गुमाओ, अल्लाह ना करे नहीं मिल रहा, एकदम दरवाजा खोल के अंदर आए, मेरा बच्चा बच्चा बच्चा, फिर बाहर चली जाए। बात मैं पूछू उधर कौन था, उसने क्या पहना हुआ था, वो क्या खा रहे थे, उसको याद होगा? तो कयामत का दिन बहुत सख्त है। तो ये जो बात है ना हमारी कि इबादत रस्म बन जाए, ये मक्का वालों का हाल था। हज करते थे लेकिन उसमें अपने बुतों के नाम पे 360 बुत रखे थे। ये सारा आपको नबूवत से पहले की कहानी है। जय हुबल फला, और नाम के उमरा करते थे वो, हज करते थे वो। ये तो इस्लाम में हज फर्ज हुए ना, ये इस मौजूदा शक्ल की बात है। हर नबी ने हज किया, लेकिन वो क्या करते थे, रस्मी कलामी करते थे काम। इसी तरह से आप देखिए लब्बैक कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये कहने के बाद एंड पे एक जुमला अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया था, हाँ मगर ए अल्लाह जिनको तू खुद अपना शरीक बना ले वो तेरे शरीक है, नऊज़ बिल्लाह। आज लोग नहीं कहते, हमारी इन बुजुर्गों के आगे और इन बुजुर्गों के अल्लाह के आगे, साड़ी सुनदा नहीं ते ना दी मोड़दा नहीं, नऊज़ बिल्लाह। यानी इनको कोई अथॉरिटी बुजुर्गों को मिल गई है कि अल्लाह ने इनकी सुननी है, तो जैसे आज हम रंग बिरंगे मुसलमान हुए हैं ना, ऐसे ही थे वो। ये तो शुक्र कीजिए कोई किताब नहीं उतर रही, नबी के बाद अगर कोई दूसरा नबी आता और दूसरी कोई किताब आती तो उसमें किस्से किसके होने थे, ए उम्मते मोहम्मदिया, ए नॉर्वे वालो, ए अमेरिका वालो, ए पाकिस्तान इंडिया वालो, ए फलां वालो, ए फलां वालो। हम तो रस्मी मुसलमान हैं, इधर आके भी हमारा फोकस नहीं खत्म होता। ये जो हमने स्टडी सेशंस रखे हैं, हो सकता है आपको भी बोझ लगे लेकिन आपको तो आना ही है, किसी की अकल में नहीं आता कि आ जाए आप भी सुन लें। नहीं, यहाँ तो हम उमरा करने आए, यहाँ तो हम इबादत करने आए हैं, इधर उधर बाजारों में फिरना, खानों के लिए घंटों बारियों में लगे रहना, नमाजें फर्ज करके मस्जिद में जाके जरूर पढ़ते हैं लेकिन इल्म लेने का शौक नहीं है, कहते ये एक्स्ट्रा टाइम है। और जो पीछे ना सुने उसने इधर आके कहाँ सुनना है, इल्म की कदर नहीं है।